أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. عزیزان محترم، سورہ طور کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی. قرآن مجید کی اس آیت میں اور وہ دوسری کچھ آیات کہ جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس میں اللہ تعالی نے انسانی معاشرے میں جو ایک فیملی یونٹ کی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے جو روحانی اور معنوی اور اسپریچول پرنسپلز جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ جتنا بھی وقت میرے پاس موجود ہے، اس وقت میں میں ان آیات کی طرف اشارہ کروں مختصراً جن میں فیملی کے استحکام، خانوادے کے استحکام اور فیملی ویلیوز قرآن کی نظر میں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کثرت سے فیملیز کو اسپریچول کیئر اور کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، لہذا میں نے بڑے قریب سے جو کنفرنٹیشنز ہیں، جو کنفلکشنز ہیں فیملیز کے اندر، ان کو میں نے بڑے قریب سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے اپنے تجربات ہیں کہ جو ایک جنرل پرنسپل کے طور پر میں اپنی آج کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن میرا ایک تجربہ جو بتاتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعاً اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر لیں، اور ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو کہ قرآن مجید کی آیات میں جو اہم اخلاقی اور انسانی اور روحانی اصولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم ان میسیجز کو، ان پیغامات کو ہم حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں گے، ایک صحیح مومن اور صحیح متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے ہم ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی جو مشکلات ہیں، جو فیملی کی جو ہمارے ایشوز ہیں، جو لڑائی جھگڑے اور جو مسائل بے انتہا ہمیں فیملیز کے اندر نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یا دونوں طرف یا ایک طرف جو ہے اس کا ہمارے دین اور مذہب کے جو بنیادی پیغامات ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ وابستگی نہیں ہے. لہذا اس حوالے سے، چونکہ جب اخلاقیات کا فقدان ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی میں اسپریچویلٹی ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کی زندگی میں میٹیریلزم اور مادی تصور کائنات پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں روحانیت اور معنویت اور اسپریچویلٹی کا جو ایک رول ہے वो अगर खत्म हो जाता है तो उसके नतीजे में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं कि जो हमें इब्तदाई तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम उनके रूट्स की तरफ जाएं तो हमें मालूम होता है कि उसकी वजह यही कुरान और सुन्नत, अहले बैत की तालीमात, कुरान की तालीमात, अंबिया की तालीमात, उस पर सही तरह से अमल पैरा नहीं होना है। जिस इंसानी अखलाक की कुरान बात करता है, जिस इंसानी अखलाक की मारिफ अहले बैत में, नहजुल बलागा में, सहीफ़ सज्जादिया में जिसकी तरफ इशारा किया गया है, उन पर अगर इंसान तवज्जो दे तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं कि जो हमारी फैमिलीज में उस वक्त पैदा नहीं हो सकते। कुरान मजीद की जो पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो और दो तीन और आयात के पहला जो हिस्सा मेरी आज की मजलिस का होगा वो कुरान से रिलेटेड होगा कि हमें कम से कम थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि कुरान मजीद की कौन कौन सी आयात हैं और वहां से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, ताकि हम उनको अपनी जिंदगी में उन मैसेजेस को हम अपना सकें। अल्लाह ताला सूरह तूर की आयत नंबर 25 में फरमाता है व अकबला बाज़हुम अला बाज़िन यतसाअलूना, के जन्नत में जब लोग जाएंगे, बहिश्त में जब लोग जाएंगे, तो वो आपस में जब मुलाकात करेंगे तो एक दूसरे से बहुत से सवालात करेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जिसको कुरान यहाँ पर हाईलाइट करता है। कुरान ये कहता है कि ये एक दूसरे से ये सवाल करेंगे, ये तसाअलूना यानी एक दूसरे से सवाल करना कि कौन सी चीज तुम्हें बहिश्त में लेकर आई है, कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा काम तुमने, कौन सा अमल अंजाम दिया दुनिया में कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हें अल्लाह ताला ने बहिश्त में भेजा और आज तुम जन्नत की नेमतों से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हो। तो आयत नंबर 26 में वो जवाब देते हैं लोग उन लोगों के सवालात का कि जो ये पूछ रहे हैं कि तुम बहिश्त में क्या क्यों आए हो और उसकी वजह क्या थी। तो उसमें से वो कहते हैं कालू इन्ना कुन्ना कबलो फी अहलेना मुश्फिकीन, के हम जब दुनिया में जिंदगी गुजारते थे तो हम अपने अहले खाना के सिलसिले में हम मुश्फिकीन में से थे। मुश्फिकीन का लफ्ज वही जिसको हम शफीक होना कहते हैं, जिसको हम शफकत कहते हैं, उसी से ये मुश्फिकीन का लफ्ज भी आया है कि हम मुसलसल जो है हमारे अंदर दो किस्म की कंडीशंस पाई जाती थी। यानी जब हम मुशफिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इंसान में दो मुतजाद किस्म की क्वालिटीज का पाया जाना। एक क्वालिटी ये है कि इंसान में खौफ पाया जाए और दूसरी ये कि इंसान में मोहब्बत पाई जाए। यानी मुशफिकीन का मतलब ये है कि हम अहले खाना की निजात के सिलसिले में, उनकी आकबत के सिलसिले में, उनके आखरत के सिलसिले में हम हमेशा खौफ जदा रहते थे, लेकिन फिक्रमंद थे, हमें उनसे मोहब्बत थी, हमें इस लिहाज से मोहब्बत थी कि उनकी आकबत अच्छी हो, उनकी आखरत अच्छी हो, वो क्यामत में जन्नत की नेमतों से बहरामंद हो। लिहाजा खौफ भी था और मोहब्बत भी थी, इन दोनों अनासिर की बुनियाद के ऊपर जो है हम अल्लाह ताला ने इस सिफत की बुनियाद पर हमें जो है वो जन्नत में भेजा है। आप आज जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैं बहुत जब अफराद को देखता हूं, जब अदालतों में इंसान मुजरिमों को देखता है, जब इंसान जराइम को देखता है, जब आप सड़क पर जो एडिक्टेड लोग हैं या सब्सटेंस अब्यूज जो है उसमें या अल्कोहलिक जो हैं, आप जब उनको देखते हैं और उनके आमाल को देखते हैं और उसकी वजह से इंसानी मुआशरे की और सोसाइटी को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो फैमिली का सेटअप है और जो माँ बाप का जो रोल है जो उनको प्ले करना चाहिए फैमिली के अंदर, बच्चों की तरबियत के हवाले से वो रोल जब उन्होंने प्ले नहीं किया, और कुरान ने जिस सिफत की तरफ इशारा किया है, यानी जब वो मुशफिकीन नहीं थे, जब उनके अंदर खौफ और उनके अंदर जो है उनकी सआदत की फिक्र ना थी, तो उसके नतीजे में उन्होंने मुआशरे को ऐसे अफराद दिए कि जो मुआशरे पर बोझ बन जाते हैं और फिर जो जराइम का इर्तकाब करते हैं। तो ये वजूहात हमें बड़ी सिंपल नजर आती हैं। अगर आज मुआशरे में हमारी फैमिलीज के अंदर अगर हमारा जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इन्वायरमेंट कौन सा क्रिएट किया है। कभी कभी जो स्पाउसेस हैं, जो मियां बीवी हैं, उन्हें बच्चों की खातिर, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की खातिर अपनी जो जाती रंजिशें हैं उनको दूर करना पड़ता है, उनको एक तरफ रखना पड़ता है, जो जाती इख्तलाफात हैं उनसे सर्फ नजर करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो माशरे में जो औलाद आने वाली फ्यूचर में जब वो माशरे में कदम रखेगी तो वो एक प्रोडक्टिव हो और फ्रूटफुल हो, और इंसानी माशरा जो है उनसे खैर की तवक्को करे, और इंसानी माशरा जो है वो उनसे फायदा उठाए, और उनसे अमन और सलामती जो है उस पूरे माशरे को हासिल हो। तो ये एक आयत कुरान मजीद की कि जो हमें इस लिहाज से नजर आती है, और साथ मैंने ये मैसेज दिया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर जाती इख्तलाफात हमारे दूर नहीं भी होते तो हम अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर भी रहम नहीं करते, और आने वाली नस्ल को हमें हरगिज इस बात की फिक्र नहीं होती कि हमारे फला अमल से, हमारे इख्तलाफ से, हमारे कॉन्फ्रंटेशनल बिहेवियर से हमारी औलाद पर और हमारी नस्ल पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके मुकाबले में ऐसी भी फैमिलीज मौजूद है जो वाकई अपनी औलाद की खातिर, आने वाली नस्ल की खातिर जो है अपने जाती मुफादात और जाती इख्तलाफात को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं। तो ये हमें आपने देखा कि अभी कुरान की पहली ही आयत में हमारे सामने कितना सुनहरी उसूल जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह रूम की आयत नंबर 21 में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअला बैनकुम मुअद्दतन वरहमतन इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। तो अब इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैंने तुम्हें जोड़ों में, तुम्हें स्पाउसेस में जो है मैंने खल्क किया इस तरह से कि तुम एक दूसरे के साथ आराम और सुकून हासिल कर सको, और फिर का वज्जा अला बैनकुम मुवद्दतन व रहमतन, मैंने तुम्हारी फितरत में, मैंने तुम्हारे वजूद में दो बड़े बुनियादी उसूलों को रखा है, एक रहमत का उसूल है और एक मुवद्दत का उसूल है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि कुरान मजीद जिन उसूलों की तरफ इशारा कर रहा है, आप देखेंगे कि तमाम के तमाम हमारे फैमिली इश्यूज जो बहुत सीरियस शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज टूट जाती हैं या तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती हैं, उसकी एक वजह ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स कुरान जिनकी तरफ इशारा कर रहा है, हम इन प्रिंसिपल्स पर जो है वो तवज्जो नहीं करते या हम उसको जो है वो अपनाते नहीं है। कुरान ये कहता है कि मुवद्दत और रहमत का उसूल मैंने दिया है। देखिए, मुवद्दत जो है उसका मतलब ये है कि आप किसी से मोहब्बत करें लेकिन मोहब्बत का इजहार भी करें। सिर्फ मोहब्बत करना काफी नहीं है बल्कि मोहब्बत का इजहार करना जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारे फैमिलीज के अंदर जो है वो कभी कभी मोहब्बत का उंसुर होता है लेकिन मोहब्बत के इजहार का तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं होता या वो होता ही नहीं। लिहाजा कुरान बड़ी वजाहत के साथ इस लफ्ज के जरिए हमें समझाना पड़ता है कि मोहब्बत एक चीज है, मोहब्बत का इजहार एक और चीज है। इसीलिए मोहब्बत अहले बैत में और मवद्दत अहले बैत में फर्क है। हम हो सकता है कि हम अहले बैत की मोहब्बत रखते हों लेकिन अहले बैत की मोहब्बत से ज्यादा अहले बैत की मुवद्दत अगर हमारे दिल में होगी तो इसका मतलब यह है कि लोग हमारे वजूद में, हमारे अहमाल में, हमारे किरदार में, हमारी गुफ्तार में अहले बैत से मोहब्बत का इजहार भी देखेंगे। वो ये भी देखेंगे कि हम वाकई अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हम उस मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी सिफात को भी इंसान अपनाता है, उसकी क्वालिटीज को भी इंसान अपनाता है। ये हो नहीं सकता कि आपको किसी से सच्ची मोहब्बत हो और आप उसके अखलाक को, आप उसकी क्वालिटीज को और आप उसकी सिफात को खुद आप उसको एडॉप्ट ना करें। तो ये मुवद्दत का पहलू है। और रहमत का जो पहलू है, उस रहमत में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रहम दिली का जज्बा है। यानी जब इंसान, अल्लाह ताला ये कहता है कि मुवद्दत जो है वो हमेशा बाकी नहीं रहती, यानी जब हम फैमिलीज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मोहब्बत मुवद्दत का एक ताल्लुक जो है वो दो तरफा ताल्लुकात से है। यानी दोनों तरफ से ताल्लुकात अच्छे हों तो मुवद्दत का पहलू नजर आता है और तभी इंसान इजहार मोहब्बत भी करता है। अगर एक फरीक, एक स्पाउस जो है वो फर्ज करते हैं कि हमेशा उसका रवैया खराब हो और दूसरा जो है उससे हमेशा मोहब्बत का इजहार करे, तो ये चीज मुमकिन नहीं होती। मुवद्दत के अंदर जो है वो दोनों तरफ से बराबर की जो कंट्रीब्यूशन है वो होती है। लेकिन रहमत का ताल्लुक इस बात से है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जहां पर मुवद्दत का सिलसिला खत्म हो जाता है बल्कि वहां पर रहमत का सिलसिला शुरू होता है, वहां पर रहमदिली का उसूल शुरू होता है। यानी ये वो जगह होती है जहां एक फरीक जो है वो आप समझते हैं कि उसके अंदर कमी है, उसके अंदर डिफेक्ट है, उसके अंदर डेफिशिएंसी है, उसके अंदर जो है वो इम्परफेक्शन है, जिसके नतीजे में ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जिसके सीने में रहमत का उसूल है और रहम दिली का जज्बा है, रहम का ताल्लुक जो है वो ईसार और कुर्बानी से होता है। यानी अब कुरान ये कहता है कि एक वो भी मकाम आता है कि जब आपको, हमारे यहां तो आमतौर से फैमिली में यही होता है ना कि ब्लेम गेम हमारी खत्म नहीं होती, कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन अगर हम गौर से कुरान मजीद के ऊपर रोशनी डालें तो कुरान मजीद जो है वो बड़ी वजाहत के साथ ये कहता है कि अगर आपको यकीन भी हो जाए कि दूसरा साथी जो है उसकी गलती है और उसकी जो है वो मिस्टेक है, लेकिन इसके बावजूद इसार और कुर्बानी का जो जज्बा है वो ऐसी कुरान मजीद का और इंसानी अकल और इंसानी फितरत का ये ऐसा सुनहरी उसूल है, ऐसा प्रिंसिपल है कि मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में समझता हूं कि आज ये उसूल जो है हमारी जिंदगी से खत्म होता जा रहा है। जिसको हम ईसार कहते हैं, जिसको हम कुर्बानी कहते हैं, जिसको हम सब्र तहम्मुल कहते हैं, जिसको हम मुश्किलात को बर्दाश्त करना कहते हैं, और वो भी किसके लिए, अल्लाह की खातिर, आखरत की खातिर, आकबत की खातिर, हार्डशिप्स के मुकाबले में अगर हम जो है वो नेगेटिव हमारा रिएक्शन होगा, अगर हम जो है वो उसके मुकाबले में हम नेगेटिव हमारा रद्द अमल होगा तो उसके नतीजे में ये सारे मसाइल पैदा होते। इसार और कुर्बानी का मतलब ये है कि मैं अपने आप को दूसरे पर तरजीह नहीं दे रहा बल्कि दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दे रहा हूं। जब मेरे अंदर रहमत का जज्बा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे में मैं किसी कमी को देख रहा हूं, किसी महरूमियत को देख रहा हूं। कभी कभी जब आप किसी फकीर को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, तो आपका जो कल्ब है, आपकी रूह मुतासिर होती है। ये आपकी रूह मुतासिर क्यों होती है? ये इसलिए मुतासिर होती है कि आप उस महरूमियत को देखते हैं। जब आपका कल्ब मुतासिर होता है तो आप उसकी हेल्प करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। तो क्या ये जज्बा हमारी फैमिलीज के अंदर मौजूद है? क्या इसारो कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है? ये के दूसरा कसूरवार है, वो देखें दूसरे के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो इस बात पर खुश हो कि एक तरफ तो रहम का जज्बा है, दूसरे का भी ये फर्ज है कि वो अपनी गलतियों का एतराफ करे, अगर उसकी कोई मिस्टेक है तो उसको अंडरस्टैंड करे कि ये मेरी मिस्टेक है, वो दूसरे के जो है वो गर्दन के ऊपर ना डाले। तो ये कुरान मजीद का उसूल जिसको रहमत का उसूल कहते हैं, और यही चीज अहम है इस बात को समझने के लिए। जब हम अस्माओं सिफात इलाही की बात करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, जब हम हर नमाज के बाद तस्बीह करते हैं, जब हम अल्लाह ताला को मुनज्जा और मुबर्रह करार देते हैं हर किस्म के ऐब व नक्स से, तो उसके पीछे जो बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला को जब कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि परवरदिगारा तू रहमान है, तू रहीम है, तू हम पर अपनी रहमत भेज, अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमा, परवरदिगारा तू जो है गफूर रहीम है, तू हमें माफ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ये कहेगा कि जब तुम खुद मेरी इस सिफत को तुमने अपनी जात में नाफिज नहीं किया, मैं तुम्हारे अंदर अपनी सिफत को नहीं देखता, अपने इस वस्फ को नहीं देखता, जब रहमत तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तुम दूसरों पर रहम नहीं खाते हो, जब इशारों कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तुम खुद रहमत का सबूत नहीं देते, तो तुम मुझसे क्यों तवक्को करते हो कि मैं रहमत का सबूत दूं। तुम अगर दूसरों को माफ नहीं करते हो, जब दूसरों को फॉरगिव नहीं करते हो, तो तुम मुझसे क्यों तवक्को करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो ये फलसफा कुरान का इस बात को समझने की जरूरत है, और इन प्रिंसिपल्स को हमें जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में उसको जो है सामने लाने की हम कोशिश करें। कुरान मजीद की तीसरी आयत जो है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है वा आशिरुहुन्ना बिल मारूफ व इन करहते मुहुन्ना फ असा अन तकरहु शयअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ये कहता है कि खास तौर पर जाहिर है कि कुरान जिस वक्त नाजिल हुआ तो उस वक्त जो है वो मर्दों की हाकमियत बड़ी शदीद थी और मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी और औरतों को बुरी तरह से सप्रेस भी किया जाता था। उस वक्त से लेकर आज तक कुरान का ये यूनिवर्सल मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान इसकी मैं तर्जुमा करने से पहले मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है। कुरान कहते हैं वह आशिरहुन्ना बिल मारूफ कि तुम अपनी जो खवातीन है आप उनको जो है वो बिल मारूफ नेकी के साथ अच्छे तरीके से जो है आप रखें, यानी ऐसे अच्छा रखना। मारूफ का मतलब यह है कि जो आम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मियार हो कि आप जो सोसाइटी के जो उकला हैं, साहिबान अक्लो फिक्र हैं, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो आपको एक्सेप्ट करें और आपकी बात को कि आपका जो रवैया है आपकी फैमिली के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान ने खास तौर पर यहाँ पर जो वाइफ्स का तस्करा किया है, खवातीन का तस्करा किया है, इसलिए कि जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो मर्द के और औरत के जज्बात और एहसासात में बहुत फर्क होता है, और उस फर्क की बुनियाद पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान ये कहता है कि वा आशिरहुन्ना बिल मारूफ के अच्छे तरीके से और नेकी के साथ रखो, ना ये कि तुम उनकी फीलिंग्स को हर्ट करो, तुम उनको अज़ियत करो, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओ, तुम उनकी दिल आजारी करो, तुम उनको मेंटली टॉर्चर करो, इसकी किसी भी जगह पर जो है वो इजाजत कुरान नहीं देता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल। और फिर कुरान जो फैमिली रिलेशनशिप है उसको बहुत अहमियत देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी वजह से जो है कोई पसंद नहीं है अगर तुम्हें, तो तब भी अल्लाह ताला कहता है कि वह यज अल्लाह फीहे कसीरन। लेकिन तुम क्योंकि जाहिर है कि इंसान हो सकता है एक दूसरे को किसी एक जहत से जो है वो पसंद ना करता हो, किसी की आदत पसंद ना हो, किसी का रवैया पसंद ना हो, कोई भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे को जो है वो पसंद ना करते हो। लेकिन कुरान ये कहता है अगर इंसान सब्र तहम्मुल के साथ और इस रिलेशनशिप को जारी रखता है बावजूद इसके कि बास जगह पर उसको बास चीजें पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं इसी रिलेशनशिप में तुम्हें खैर कसीर अता करूंगा। यानी वो तुम्हें दुनिया में बरकत की सूरत में, दुनिया में नेक औलाद की सूरत में, दुनिया में किसी भी सूरत में अल्लाह ताला जो है वो खैर कसीर अता कर सकता है कि जो लोग में ये प्रिंसिपल और ये उसूल जो है वहां पर मौजूद होता है। तो हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि ज्यादातर जब कुरान ये कहता है कि डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ है या किसी चीज को पसंद नहीं करते, अक्सर फैमिलीज के अंदर जो है वो जो इख्तलाफात हैं वो गलत फहमियों का नतीजा होते हैं, वो मिसकंसेप्शंस का जो है वो नतीजा होते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि इंसान इस बात के ऊपर तवज्जो करे। कुरान कहता है ला तक्फ मा लैसा लका बिही इल्म, कि तुम आगे मत बढ़ो जब तक तुम्हें किसी चीज का यकीन ना हो, जब तक तुम्हें किसी चीज का जो है वो इल्म ना हो। तो ये कुरान मजीद की आयत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अपनी नजर में रखें। इसके बाद एक और मकाम पर कुरान हजरत जकरिया की फैमिली का तस्करा करता है और हजरत जकरिया के हवाले से कि जब उनकी आखिरी उम्र तक जब उनकी औलाद नहीं हुई, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की औलाद के लिए। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जकरिया की दुआ को कबूल किया और हमने उनकी वाइफ को इस काबिल बनाया कि वो साहिब औलाद हो सके। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है कि मैंने इस खानवादे और इस फैमिली की अगर दुआ को कबूल किया और मैंने दुआ उस उम्र में जाकर, उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर मैंने उनकी जौजा को साहिब औलाद किया, तो उसकी वजह वो तीन खूबियां थी जो इस खानवादे में और इस घराने में पाई जाती थी। पहली खूबी इस खानवादे में कुरान ये कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये वो घराना है कि जब भी कभी नेकी का मौका मिलता है तो वो नेकी करने में जल्दी करते हैं, नेकी करने में रश करते हैं, वो दूसरों को मौका नहीं देते बल्कि खुद आगे बढ़कर वो नेक काम अंजाम देते हैं। तो पहली सिफत इनकी ये है वह युसारिऊना फिल खैराते, युसारिऊना का मतलब ये है कि वो कंपीट करते हैं, वो कंपटीशन में आते हैं, वो मुकाबला करते हैं दूसरों से कि इस चीज का मुकाबला कि कौन पहले नेकी करता है, कौन पहले अच्छा काम अंजाम देता है। और यही वजह है कि कयामत के दिन इंसान जो यौमे हसरत जिसको कहा गया है, कयामत में इंसान को हसरत होगी उन अफराद को भी कि जो हत्ता जन्नत में जाएंगे, बहिश्त में जाएंगे और उनका हिसाब किताब अच्छा होगा, उन्हें इस बात का दुख होगा कि दुनिया में मौका था उनके पास कि फला दिन फला जगह पर वो नेक काम अंजाम देते, किसी की मदद कर सकते थे, मदद नहीं की। तो आज उनको ये एहसास हो रहा है उसका जो अजर उनको मिलना चाहिए था और वही अजर उस दूसरे शख्स को वो अपनी निगाहों से देख रहे हैं जिसने वही नेक काम अंजाम दिया, तो उस वक्त उसको जो है निदामत और हसरत का जो है वो एहसास होगा। तो ये पहली सिफत है इस खानदान के अंदर, वह यदऊनना रगबन व राहबन। और फिर दूसरी सिफत ये है कि रगबन व राहबन, यानी ये खानवादा वो है जो हमें पुकारता है, अपनी मुश्किलात में पुकारता है, लेकिन दो सूरतों के साथ, दो हालतों के साथ, एक रगबन रगबत के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदिली के साथ, और विशफुल होकर, यानी दिल से हमें मोहब्बत के साथ हमें पुकारता है और साथ साथ रगबत के साथ, उम्मीद के साथ। इसके अंदर उम्मीद भी है, हमारी रहमत पर उम्मीद है, हमारी जो हमारा फैज है, हमारी जो यानी अकाउंटेबिलिटी का जो तरीकाकार है, उस हवाले से उम्मीद और साथ साथ इस बात का खौफ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आमाल जाया हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल ना करे। तो खौफ और रगबत, उम्मीद और खौफ का उसूल जो है वही इंसान को आगे बढ़ाता है, वही इंसान को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंसान की जो है वो मदद करता है। और तीसरा इस खानदान की सिफत अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वकानू लना खाशईन, कि ये वो खानवादा है जो हमारे सिलसिले में खाशे थे, इनमें खुजू था, इनमें खुशू था। खुजू जाहिरी तौर पर झुकने को कहते हैं, लेकिन खुशू जो है वो बुनियादी तौर पर आपका कल्ब किसी के सामने झुक जाए, आपका रूह किसी के सामने झुक जाए। आपका कल्ब उसी वक्त किसी के सामने झुकता है जब आप किसी की अजमत को दिल से कबूल करते हैं। जब तक आप किसी की अजमत को अपने रूह और कल्ब से कबूल ना करें, आप कभी भी उसके सामने, आपका जाहिर झुक सकता है, आपका जिस्म झुक सकता है जाती मुफादात की खातिर, लेकिन आपका जो दिल है और कल्ब है और आपकी रूह जो है वो कभी तस्लीम नहीं हो सकती। ये वो घराना है कि जो हमारी हैबत को समझता था, ये वो घराना है जो हमारी अजमत को समझता था, ये वो घराना है जो हमारी अजमत और जलालत के सामने उसका कल्ब जो है वो खाशे था, यानी वो तस्लीम था हमारे सामने। तो ये तीन खसूसियात हम अगर देखें कितनी अहम है कि हमारी फैमिली लाइफ में इन तीन खसूसियात या तीन सिफात अगर हमारे पास हों तो उसकी एक अपनी जगह पर अहमियत है। हम हजरत ज़हरा सलामुल्लाहा की जिंदगी में देखते हैं कि आपकी जिंदगी में रूहानियत का पहलू था, आपकी जिंदगी में आपकी जो खानवादगी जिंदगी थी, आपकी जो फैमिली लाइफ थी, उसमें जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थी उसको अहमियत दी जाती थी, उसमें आखरत का खौफ जो है उसको वैल्यू दी जाती थी, उसमें खौफ खुदा जो है उसको वैल्यू दी जाती थी, उसमें जो कुरान मजीद की जो आयत है कि यूफूना बिन नजर, के जब इस फैमिली ने, इस खानवादे ने जब बच्चों के लिए नजर की कि अल्लाह ताला उनको बीमारी को बरतरफ कर दे, तो इसका मतलब ये है कि आपका आखरत पर, अल्लाह पर आपका इस हवाले से कि जहां आप तबीब और डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है, वहां पर आप स्पिरिचुअल कॉजेज जो इस कायनात में है कि हकीकी माना में शिफा देने वाला वो अल्लाह की जात है। अल्लाह जो है, हो सकता है जाहिरी तौर पर कोई तबीब आपका इलाज ना कर सके, लेकिन अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। इस कायनात में ऐसे असरार मौजूद हैं, इस कायनात में ऐसी स्पिरिचुअल कॉजेज मौजूद हैं कि जो हम पर असरअंदाज हो सकती हैं, जिसको हम जाहिरी पैमाने पर नहीं समझ सकते हैं, जाहिरी मेडिकल बेसिस पर हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो नजर का होना खुद हमारी अपनी जिंदगी के अंदर इस बात की दलील है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। वह युखाफूना यौमन काना शर्रहु मुस्ततीरा, और वो उस आखरत से खौफ खाती थी ये फैमिली कि जिसका शर जो है वो हर तरफ क़यामत में फैला होगा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोई काम अल्लाह की खातिर करना, अगर किसी चीज को दोस्त रखना वो भी अल्लाह की खातिर रखना, किसी चीज को दुश्मन रखना वो भी अल्लाह की खातिर रखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा की खातिर किसी काम को अंजाम देना, अल्लाह को अपनी जिंदगी में हाजिर और नाजिर जानना, अल्लाह ताला की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में फील करना और आखिरत का खौफ, अगर यही हमारी फैमिली लाइफ के अंदर। देखें, मुझे हैरत होती है कि सिले रहमी पर कितनी सख्त अहदीस मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिले रहमी है उसको यानी बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। आज वो जमाना आ गया है कि भाई भाई के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, बहन भाई के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि ना कोई किसी के ऊपर बोझ है, ना किसी के साथ जो है वो कोई डिपेंडेंट है, लेकिन इसके बावजूद इसमें मर्दों का भी किरदार है, इसमें ख्वातीन का भी किरदार है, और मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहूंगा कि जो कसूर औरतों का है इसमें कि वो फैमिली को कट ऑफ करना दूसरों के साथ और सिले रहमी ना करना, उस हवाले से जो है उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं और मर्दों का अपना कसूर है, तो दोनों इसके अंदर बराबर के कसूर हैं। लिहाजा आज की इस सोसाइटी के अंदर ये चीज जो है वो कुरान के इन उसूलों को हम ये देखते हैं, क्या वजह है कि आप जो है अपनी फैमिली से कट ऑफ हो रहे हैं, क्या वजह है कि आप अपनी फैमिली के अफराद को अपने घर में नहीं आने देते, जबकि कोई ऐसा बड़ा इशू भी नहीं है, या तो कोई ऐसा इशू हो कि कोई आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वॉल्व हो रहा है, कोई ऐसा इशू हो कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पर तो आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन आपके पास क्या जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि जब कोई ऐसी चीज भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमारे फैमिली रिलेशनशिप जो हैं वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि आखिरत का खौफ का खत्म होना, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर ना होना और खुदा के लिए काम को ना करना। यानी हमारी बेसिस अगर ये हो कि हमने काम खुदा के लिए नहीं करना, अपनी जात के लिए करना है, अपनी मुफाद के लिए करना है, अपनी दुनिया के लिए करना है, ताकि हम अपनी दुनिया को संवार सकें, ताकि हम अपनी फैमिली में फर्ज करते हैं एक चीज जो है वो ये है कि अगर औरत है तो वो अपनी फैमिली को प्रेफर कर रही है शौहर की निस्बत, शौहर है तो वो अपनी फैमिली को प्रेफर कर रहा है, या जो भी आप इसकी सूरत हाल बनाए, ये जो हमारे मुआशरे में एतदाल खत्म हो गया है, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम इन अखलाकी उसूलों की पाबंदी ना करें और कुरान के साथ अपने आप को जो है हम मानूस ना करें। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में जो स्पिरिचुअलिटी हमें नजर आती है, जो मानवियत हमें नजर आती है, उसी की वजह से हम ये देखते हैं कि जनाब ज़हरा कितनी सेंसिटिव थी इस मामले में कि अली इब्न अबी तालिब को किसी ऐसा तकाजा उनसे ना करें कि जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े, जिनकी वजह से उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो स्ट्रेस आउट हो जाए। लिहाजा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तीन मकाम पर, दो मकाम पर खास तौर पर फरमाती हैं कि या अली, अब आप देखें रिलेशनशिप की अहमियत क्या है, फरमाती हैं कि या अली मैं अपने बाबा के घर से इस घर में आई हूं और इस घर से इसके बाद मैं सिर्फ आखिरत के घर में जाऊंगी। यानी आप अहमियत देखें कि फैमिलीज की अहमियत कितनी है और रिलेशनशिप को दायमी तौर पर बाकी रखने की अहमियत जो है वो इस्लाम में कितनी ज्यादा है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह फरमाती हैं कि या अली तीन चीजें मेरी जिंदगी में नहीं थी कभी भी, जब से मैं आपके घर में आई हूं पहली चीज ये है कि या अली मैंने कभी आपके साथ झूठ नहीं बोला, या अली मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, या अली मैंने कभी आपकी मुखालफत नहीं की। ये हैं वो प्रिंसिपल्स के जिनको हमें जो है वो अपने सामने रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये चंद कुरान की आयात अगर हम इन्हीं पर गौर करें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो 90% से ज्यादा इख्तलाफात हैं, जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, वो सिर्फ कुरान से हमारी दूरी है, वो सिर्फ अहले बैत के दर से हमारी दूरी है, ना जिस्मानी तौर पर ना फिजिकली जिस्मानी तौर पर हम मजालिस में आना, जहां तक अल्फाज की हद तक ताल्लुक है, जबान की हद तक ताल्लुक है, वो सारी चीजें हमारी ज्यादा हैं, लेकिन हकीकी माना में जो तालीमाते मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जो कुरान की तालीमात हैं, अगर हम उनसे दूर होंगे, अगर हम जज करना चाहते हैं किसी फैमिली को, ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं और पूरे तजर्बे के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई किसी फैमिली को इवेलुएट करना चाहते हैं कि इस फैमिली में जो इश्यूज हैं वो क्यों है, जो कन्फ्रंटेशंस हैं वो क्यों है, जो कन्फ्लिक्शंस हैं वो क्यों है, आप हैरान हो जाएंगे जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप तहकीक करेंगे, तो आखिर में आपको ये पता चलेगा कि कुरान और सुन्नत से दूरी, اہل بیت کی تعلیمات سے دوری، وہ اصول جو اخلاقی ہیں، جو انسانی ہیں، جو روحانی ہیں، جو مانوی ہیں، جو قدم قدم پر ہماری مدد کرتے ہیں، جو قدم قدم پر ہماری مشکلات کو دور کرنے میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان سے جب ناآشنا ہوتے ہیں، جب ان سے مانوس نہیں ہوتے، جب ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ایشوز ہمیں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جو چند منٹ میرے پاس باقی ہیں، میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، زیادہ تر میں نے جنرل پرنسپل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کی ہیں اور میں اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فیملیز کے اندر جس کو ہم احترام متقابل کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کرنا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کی فیلنگز کا احترام کرنا، یہ چیز جو ہے جب ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، فیملی آپ کی بعد میں بنتی ہے، شخصیت آپ کی پہلے بن چکی ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی فیملی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ فیملی میں آنے کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ ہم پہلے سے ان کو وراثت میں لے کر آتے ہیں، اپنی تربیت میں لے کے آتے ہیں۔ جیسی ہماری ایجوکیشن ہوئی ہوتی ہے، جیسی ہماری تربیت ہوئی ہوتی ہے، جیسے اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے شاید، میں آپ کو، آپ حیران ہوں گے، اکثر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر تو شاید نہ کہوں بلکہ بہت سے افراد میری نظر میں ایسے آتے ہیں جب فیملیز کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، کہ اصلاً ان میں ریڈینس تھی ہی نہیں کہ یہ شادی کرتے، ان میں یہ اپنے آپ کو اس تیار ہی نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنا گھر بسا سکتے۔ لہٰذا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر ہماری پرابلم ہے تو شادی سے پہلے ہے۔ جو پرابلمز ہیں، اخلاقی ایشوز ہیں، اگر غرور ہے، اگر تکبر ہے، اگر ہمارا زبان پر قابو نہیں ہے، اگر ہم دوسروں کے ساتھ ڈس رسپیکٹ فل ہیں، اگر ہماری عادت بن چکی ہے تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈس رسپیکٹ فل ہوں گے، اگر ہم جو ہے دوسرے کی توہین کرنا پسند کرتے ہیں، اہانت کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ پہلے ہماری عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر فیملی میں یہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک نقطہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم احترام کریں اور اپریشیٹ کرنا سیکھیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اپنی گھر کی زندگی میں، یہ جو سپاؤسز ہوتے ہیں، کہ جب بھی، چاہے بچے ہوں، چاہے میاں ہوں، چاہے بیوی ہو، جب بھی کوئی اچھا کام آپ کی نظر میں ہو، تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ریلیکٹنس ہماری فیملیز میں پائی جاتی ہے وہ اپریسیشن کی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اس کی شدت سے جو ہے وہ اس پر تاکید کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں۔ دوسرا چیز جو ہے اسی کے ذمن میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اگلی مجلس میں جاری رکھوں گا اور بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ایشوز رکھوں گا کہ جن کو میں فیس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مجالس میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اگر میرے لیے واقعاً اہم ہو، آپ یقین کریں کہ اگر فرض کریں یہ میرا اخلاق ہو اور یہ میرے لیے ملکہ بن چکا ہو اور میرے لیے امپورٹنٹ ہو کہ میں کسی کی فیلنگز کو بلا وجہ ہرٹ نہیں کروں گا، میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا، میں کسی کو ٹارچر نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں، اولاد ہے، اپنے پیرنٹس کے سلسلے میں اولاد کو بھی یہ احساس، جس کی تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے احساسات کو مجروح کرنا، ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترنا اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو دوسرا ایشو یہ اخلاق اگر ہمارے اندر ہو، اپریشیٹ کرنے کا اخلاق جو ہے وہ اگر ہمارے اندر ہو، اور یہ کہ ایک دوسرے کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں، एक दूसरे के जो जज्बात हैं, एक दूसरे का जो जज्बा है, एक दूसरे के जो रुझानात हैं, हमारी उसके बारे में कोई इवेल्युएशन नहीं होती। हम उसके बारे में, जाहिर है कि हर एक का एक जाती सलीका होता है, हम एक दूसरे के सलीके का इख्तलाफ जो है एहतराम करना, ये कभी कभी हमारी फैमिलीज के अंदर बहुत मुश्किल होती है। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा सलीका है, जो मेरा अंदाज है, उसी को घर में होना चाहिए। तो सलीके का इख्तलाफ और है कि जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको अहम है कि साइकोलॉजिकली एक दूसरे की जो कंडीशंस हैं और एक दूसरे के जो रुझानात हैं, टेंडेंसीज हैं, इंक्लिनेशंस हैं, उनको इंसान अगर समझे तो बहुत सी चीजों पर इंसान काबू पा सकता है। अगर आपको ये पता हो कि आपकी स्पाउस जो है, चाहे वो गलती पर है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है या स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपका ये फर्ज है कि आप स्ट्रेस ना दें। आपका ये फर्ज है कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप मुआशरे में, घर में स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट क्रिएट ना करें। तो आप बजाय इसके कि आप एक दूसरे से लड़ें कि जी किसने कहा कि इंसान स्ट्रेस में आ जाए, किसने कहा डिप्रेशन में चला जाए, ये तो कोई इशू नहीं, तो एक दूसरे के रूहानी हैसियत को समझना और पहचानना जो है, ये ऐसी चीज है कि जिसको मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फैमिलीज के अंदर जो है वो मैं देख रहा हूं कि हमें चाहिए कि हम इसको एड्रेस करें। इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं जारी रखूंगा और बहुत सी अहम बातें हैं। हो सकता है कि अगर मैं इस मौजू को लेकर आगे चलता हूं तो मैं चाहूंगा कि इसको शेयर करूं और ये बातें सारी की सारी कम से कम रिकॉर्ड में आ जाएं और लोग जो हैं आने वाले बहुत से जो फैमिली इश्यूज हैं, जो बहुत प्रिसाइजली जिनको हो सकता है कि मैं उनको भी एड्रेस करूं, उस हवाले से अपनी गुफ्तगू को मैं इस दुआ के साथ मैं चाहता हूं कि पाए तकमील तक पहुंचाऊं कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि कुरान मजीद की इन आयात में जो अहम मैसेजेस हैं, जो अहम पैगामात हैं, अल्लाह ताला इन पैगामात को हासिल करने और इन उसूलों को अपनी जिंदगी में हमें नाफिज करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बस अज़दारा ने अजीज, आज शब आशूर भी है और बड़ी सख्त रात है, बड़ी मुश्किल रात है, लेकिन आज हम तस्करा करते हैं उस 6 माह के बच्चे का, अली असगर का, कि जो बड़ी एक तकलीफ दे मसला और बड़ी तकलीफ दे मुश्किल थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मकाम पर, हमारे इमाम से ये रिवायत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। जब अली असगर की शहादत होती है तो आप ये कहते हैं कि अजीब दुआ है इमाम हुसैन की करबला में। मैं समझता हूं कि बड़ी इसके अंदर गहराई है, बड़ी इसके अंदर डेप्थ है। इमाम हुसैन ये फरमाते हैं कि परवरदिगारा, अगर ये जो कुछ जो हादसा पेश आया है मेरे बच्चे की शहादत का, परवरदिगारा अगर ये तेरे हुजूर में ना होता, परवरदिगारा अगर तेरी प्रेजेंस में ना होता, परवरदिगारा अगर मेरे अंदर ये एहसास ना होता कि मेरा खुदा देख रहा है, तो मैं कभी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त था ये सदमा, लेकिन परवरदिगारा मैं इस सदमे को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मुझे मालूम है कि तू देखने वाला है, तेरी प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है। बस अज़ादारो, जब सब अस्हाब भी शहीद हो जाते हैं और फिर जब सारे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आल औलाद है, इसके बाद जब मैदान जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और सहराए करबला में ये आवाज बुलंद हो रही है, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज का बुलंद होना था कि एक मर्तबा खैमे में कोहराम मच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी कि खैमे में रोने की आवाज आ रही है। एक मर्तबा हुसैन खैमे पर आए और जैनब से पूछा कि बहन जैनब, अभी तो मैं जिंदा हूं, ये कैसा कोहराम है, ये कैसा रोने की आवाज है। बस जैनब ने कहा कि भैया जब से आपने हलमी नासिर यंसुरना की आवाज बुलंद की है इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है। भैया इसको माँ गोद में लेना चाहती है, ये माँ की गोद में नहीं आती। फूफी गोद में लेना चाहती है, ये गोद में नहीं आती। अजादारों तारीख ये बताती है हुसैन ने आगे बढ़कर अली असगर को अपनी गोद में लिया। अली असगर हुमक कर अपने बाबा की गोद में आए। अब हुसैन अली असगर को जब खैमे से बाहर लेकर चलना चाहते हैं तो खैमे के दरवाजे पर रुबाब मौजूद हैं। रुबाब को ये कहकर कि मैं बच्चे को लेके जा रहा हूं, रुबाब ने कहा कि मौला मैं आखिरी दीदार अपने बच्चे का करना चाहती हूँ। मौला सुबह से लेकर अब तक जो भी मैदान जंग में गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन ने जवाब दिया, रुबाब ये बच्चा कोई जंग करने नहीं जा रहा, हो सकता है दुश्मन इस बच्चे पर रहम खा ले। अजादारो हुसैन जब खैमे से निकलते हैं दुश्मन की फौज ये कहती है कि ऐसा लगता था कि जैसे हुसैन जंग की नीयत से नहीं आ रहे। कोई ये कहता था कि ऐसा लगता था कि जैसे हुसैन जो है वो कुरान को हाथ में लेके आ रहे हैं। अजादारो जब मैदान के वसत में इमाम हुसैन पहुंचते हैं कहते हैं कि ए फौज अश्किया ये बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, इसको प्यास लग रही है, इसको पानी की जरूरत है, अगर हो सके तो तुम इसको पानी पिला दो, अगर तुम अरब हो तो मेहमान समझकर पानी पिला दो, अगर मुसलमान हो तो रसूल का नवासा समझकर मेरे बेटे को पानी पिला दो, और अगर तुम इंसान हो तो इंसानियत के नाते पानी पिला दो। लेकिन दुश्मन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखने वाले आंखों ने देखा कि एक मर्तबा हुसैन ने अपने बच्चे अली असगर को एक मर्तबा करबला की खाक पर रखा और कुछ कदम पीछे हट गए ये कहते हुए कि शायद दुश्मन ये समझे कि बच्चे के बहाने मैं खुद पानी पीना चाहता हूं। लेकिन फिर भी किसी को रहम ना आया। हुसैन ने आगे बढ़े और बच्चे को गोद में लिया और ये कहा ए अली असगर तो अपनी प्यास का खुद ऐलान कर दे। इसको ये कहना था, एक मर्तबा अली असगर ने अपने खुश्क होंठों पर एक मर्तबा जबान फेराई। अजादारो ये मंजर देखकर फौज यजीद में गिरियाजारी शुरू हो गई। उमर साद ने एक मर्तबा हुरमला को हुक्म दिया एकता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दें। बस ये बात सुननी थी। अजादारों हुरमला ने से शोभा तीर चलाया और बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। अजादारों तारीख ये बताती है कि हुसैन जब दरे खैमा पर पहुंचे तो एक मर्तबा जब आवाज दी रुबाब को, एक तरफ से रुबाब भागी दूसरी तरफ से सकीना भागी और सकीना ने कहा कि बाबा मैं भी तो आपकी बच्ची थी। बस ये कहना था कि हुसैन ने कहा कि बेटी अली असगर को तीरे सदम से सराब किया गया है। रुबाब के सामने जब अबाक को पलटा तो एक मर्तबा रुबाब ने चीख कर कहा अरे क्या इतने छोटे बच्चे पर भी इस तरह से इसको ज़िबाह किया जाता है। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کو سونپا ہم جاتے ہیں بینا ہوشیار رہو وقت آیا برادر کی قضا کا ہم جاتے ہیں بینا ہم جاتے ہیں بینا پردیس میں دیتا نہ بغا تم کو برادر پر کیا کروں خواہر مجبور ہوں کچھ بس نہیں جو حکم خدا کا ہم جاتے ہیں بینا, ہم جاتے ہیں بینا, سغرا کو دعا دینا گلے خوب لگانا, یسرب میں جو جانا, ارے کیا اور زیادہ کہوں, فرصت نہیں حاشا, ہم جاتے ہیں بینا, ہم جاتے ہیں بینا, کہنا کہ تیری یاد میں صغرا تیرا بابا حسرت زدہ اٹھا, گر پانی ملے فاتحہ شربت پہ دلانا, ہم جاتے ہیں بہنا.
Why Hussein Kush Tashud? Why Hussein Kush Tashud? Why Hussein Kush Tashud? Why Hussein Kush Tashud?